इन 10 चैप्टर्स की जो रुदाद है वो आपके सामने है, आपने पढ़ा तकरीबन एक चौथाई किताब यानी हमने मुतालिया कर ली। अब मुतालिया ऐसा होना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो उसकी कोई तस्वीर बने हमारे जहन में, हमारे हाफ़ज़े में कुछ तुलू हो। तो इस रोशनी में अगर इस चौथाई किताब का ख़लासा किया जाए तो वो ये बनता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक निज़ाम के तहत मखलूक को वजूद बख्शा और उसको अपनी सिफात के इजहार का ज़रिया बनाया। मखलूक का आपस में एक दूसरे से उस सिफात की वजह से एक रिश्ता है और उस रिश्ते को समझने और समझाने के लिए इंसान को कुछ सलाहियतें दी गईं। ये सलाहियतें बाकी मखलूकात को हासिल नहीं हैं। तो आज हम इंशाल्लाह 11वां लेक्चर पढ़ेंगे और उन्हीं सलाहियतों के इस्तेमाल की आगे जो है मज़ीद उसमें हम कैसे तरक्की कर सकते हैं और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज पेज नंबर है 94, लेक्चर नंबर 11, अंदर की आवाज़। सारी कायनात और कायनात के अंदर तमाम नोए और अफराद एक मरकजियत के साथ बंधे हुए हैं। एक तरफ वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरफ किसी सेंट्रल पॉइंट से बंधे हुए हैं। मुख्तलिफ मराहिल और जिंदगी के मुख्तलिफ जमाने जाहिरी नजरों से अलग अलग नजर आते हैं। ये जितने भी हमारी जिंदगी के मराहिल हैं, पैदा होने से लेकर बूढ़े होकर फौत होने तक, ये सारे मराहिल और जिंदगी के मुख्तलिफ जमाने ये जाहिरी नजरों से अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन जमाने के नशेबो फराज, नशेब कहते हैं नीचे को, फराज कहते हैं ऊपर को। तो जमाने की ये ऊंच नीच और जिंदगी के मराहिल में तगैयर और तबद्दल कितना ही क्यों ना हो, सब का ताल्लुक मरकजियत से है। यानी कि हमारी सारी हरकत और सकनात और जिंदगी के मराहिल में हमारा ये रद्दो बदल होना और दिन ब दिन ग्रो करना, फिजिकल ग्रोथ, फिर मेंटल ग्रोथ, ये सारा फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारे का ताल्लुक किसी मरकजियत से है। मरकजियत के दरमियान लहरें या शुआएं वास्ता हैं। यानी ये जो हमारी कनेक्टिविटी है विद दी सेंटर या सेंट्रल पॉइंट, वो बिकॉज ऑफ वेव्स है, बिकॉज ऑफ रेज है। शुआएं रेज और लहरें वेव्स। तो ये लहरें या शुआएं जो हैं इनकी जरिए हम इन वास्ता हैं, यानी इनकी वजह से या इनके जरिए हम मरकज से जुड़े रहते हैं। एक तरफ मरकजियत से लहरें या शुआएं नजूल करके अफराद कायनात को फीड करती हैं, यानी उस सेंट्रल पॉइंट से ये लहरें या शुआएं जो हैं नजूल यानी डिसेंड करती हैं, नीचे उतरते हुए कायनात के अफराद को फीड करती हैं। तो दूसरी तरफ फर्द के अंदर नजूल होने के बाद सऊद करती हैं, सऊद मैंने वापस पलटती हैं और ऊपर को चढ़ती हैं, असेंड करती हैं यानी ऊपर को रजू करती हैं। नजूल और सऊद का ये सिलसिला ही जिंदगी है। ये लीजिए जिंदगी की नई डेफिनेशन है कि जो मरकजी नुक्ते से जो शुआएं नजूल करती हैं वो हमारे जहन में, फिर दिमाग में, फिर जिस्म में वसूल होकर अपना डिस्प्ले कर वापस पलटती हैं और इसी सारे निजाम का नाम है जिंदगी। نزول و صعود کا یہ سلسلہ ہی زندگی ہے. مختصر یہ کہ ساری کائنات میں لہر یا شعاع دور کرتی رہتی ہے. دور کا مطلب ہے کہ یہ فلو کرتی رہتی ہے. شعاع اور لہر کے دورانیے کو دیکھتے ہوئے جو کائنات کی صورت بنتی ہے اس کو دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اور وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے, تو اس کو ایک شکل بنتی ہے. جیسے آپ موم بتی روشن کریں تو روشنی کی شعائیں چاروں طرف پھیلتی ہیں, تو اگر آپ اسے تصور میں دیکھیں تو روشنی ایک بڑا سا گلوب بنائے گی, ایک بڑا سا دائرہ بنائے گی. لفظ دائرے سے مراد ہے یہاں پہ ایک گلوب کی شکل. ایک انگریزی میں گلوب کو اردو میں کیا کہیں گے, اسے کرا کہہ سکتے ہیں, لیکن کرا ٹھوس ہوتا ہے, یہ ایک خلا کی صورت میں ایک بڑا دائرہ بنتا ہے. یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے, اور یہ دائرہ جب صعودی اور نزولی حرکت کرتا ہے تو چھ دائرے بن جاتے ہیں. یعنی اصل میں یہ پورا بڑا دائرہ جو ہے یہ موو کرتا ہے, اور اس کی موومنٹ سے افراد کے اندر چھ دائرے مزید بنتے ہیں. یعنی لہر در لہر در لہر در لہر. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فی ستت ایام کہا ہے. یعنی یہ جو قرآن میں بتایا کہ ہم نے کائنات کو چھ دنوں میں تخلیق کیا, یہ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ جی ہمیں چھ دنوں میں تخلیق کیا گیا. نہیں, دن نہیں ہے, یہ چھ مرکزیتیں ہیں. ایام کہتے ہیں بناوٹ کو. ایام کا مادہ یوم, یوم سے مراد ہے حالت, یوم سے مراد ہے بناوٹ, اور ہم نے اس کا ترجمہ دن کر دیا. اسی لیے مالک یوم دین, جو مالک ہے دین یعنی سسٹم کی بناوٹ کا, ہم نے کر دیا روز جزا. تو یہ سارے مفاہیم جو ہیں ان کو درست پرسپیکٹو میں سمجھانے کے لیے حضور قلندر باب اولیاء نے کتاب لوح قلم میں بہت سی گرہیں کھول دی ہیں. باقی ہمارے پہ چھوڑ دیا کہ ہم محنت کر کے اپنے ذہن میں موجود گرہوں کو کھولیں اور قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنا چاہیے. تو یہ جو چھ یوم ہیں فی ستت ایام, اصل میں وہ یہ چھ دائرے ہیں, یہ زندگی کے چھ ستون ہیں, یا جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ لطیفہ نفسی, یہ چھ لطائف جو ہیں وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات کو چھ دن میں بنایا ہے. کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرے کا نام لطیفہ نفسی ہے. اب مثال, کائنات اور کائنات کے افراد دونوں کا جو دائرہ ہے اس میں جو سب سے چھوٹا اور پہلا دائرہ بنتا ہے اس کا نام ہے لطیفہ نفسی. اب مثال دیکھیں, لطیفہ نفسی ایک چراغ ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے, اور روشنی یعنی چراغ کی اس روشنی یعنی لو, وہ جو چراغ کا شعلہ جل رہا ہے اس لو کا نام آپ نگاہ رکھ لیں, تو چراغ کی لو ہوتی ہے, وہ لو جہاں ہوگی وہاں کا ماحول روشن اور منور ہو جاتا ہے. جہاں تک لو کی روشنی بڑھتی ہے یہ خود کا مشاہدہ کر لیتی ہے, ایک سرچ لائٹ ہے وہ جلی, تو جہاں تک وہ روشنی پھیل رہی ہے وہ سرچ لائٹ میں کیمرہ لگا ہوا ہے وہ اپنی روشنی کو خود ہی دیکھ رہی ہے, یا اس روشنی کی وجہ سے جو چیزیں دکھ رہی ہیں ان کو دیکھ رہی ہے. اب چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہے, جتنے رنگ ہیں اتنی کائنات میں رنگینی ہے. اب چراغ کی لو کی روشنی ہلکی, مدھم, تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے, یہ چار درجے ہو گئے. چراغ کی لو کی روشنی ہلکی, یہ وہم ہو گیا, مدھم یہ خیال ہو گیا, تیز یہ تصور ہو گیا, اور بہت تیز یہ احساس ہو گیا. یعنی بیسیکلی یہ وہی ایک چیز ہے نگاہ, یعنی حس वो हिस के दर्जे हैं। तो जिन चीजों पर रोशनी बहुत हल्की पड़ती है उन चीजों से मुतालिक हमारे दिमाग में तवाहम पैदा होता है, तवाहम या वाहमा। और जिन चीजों पर रोशनी हल्की पड़ती है उन चीजों से मुतालिक हमारे दिमाग में ख्याल पैदा होता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी तेज पड़ती है उन चीजों का हमारे जहन में तसव्वुर बनता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी बहुत तेज पड़ती है हमारी निगाह उनको देख लेती है, यानी हम उसे बाकायदा फील करने लगते हैं। अब बताइए कोई शक व शुबा रह गया कि ये चार चीजें क्या हैं? ये वहमा, ख्याल, तसव्वुर और एहसास हैं। और ये जो लताइफ हैं इसमें लतीफा नफ्सी की मिसाल जो है वो चिराग की सी है। अब किसी चीज को देखने के लिए हम चार मराहिल से गुजरते हैं, किसी चीज को देखने और समझने के लिए। उस चीज का हल्का सा वहम दिमाग पर वारिद होता है, यानी किसी चीज से मुतालिक खाकों में निस्बतन गहराई वाक्या होती है। वो जो खाके होते हैं ना, यानी उसकी आउटलाइंस होती हैं, तो जरा उसमें गहराई पैदा हो जाती है। वहम में जब गहराई वाक्या होती है तो वो ख्याल बन जाता है, और ख्याल में गहराई पैदा होती है तो चीज के नक्शो निगार जहन पर ज्यादा गहरे हो जाते हैं। नक्शो निगार की इन गहराइयों का नाम तसव्वुर है, और जब ये नक्शो निगार तसव्वुर में खदो हाल में जाहिर होने लगते हैं, यानी उनकी डिटेल्स वाजे होने लगती हैं, तो वो चीज जिसको निगाह देख रही है नजरों के सामने आ जाती है। अब लतीफा नफ्सी के चिराग की लौ की रोशनियां जब फैलती और बिखरती हैं, और बासरा यानी देखने की हिस का बार बार आदा होता है, यानी वो रिपीट होती रहती है, तो दर्जा बदर्जा बाकी चार हिस्से तरतीब पाती हैं। तो लतीफा नफ्सी की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा मसरूफ हो जाना, यानी मुशर्रफ में आना, यानी इस्तेमाल होना और बिखर जाना, ये फिर बाकी पांचों हिस्सियात की तखलीक का सबब बनता है। जब तक हम और आप इस बात को नहीं समझेंगे कि ये सारा निजाम इतलात का है और इतलात हमारे जहन से टकराती हैं, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करती हैं उनका नाम है वहमा। जब जहन उनकी तरफ मतवजो होता है वो ख्याल कहलाती है, जब जहन की गिरफ्त में आके वो ख्याल जरा वाजे होता है तो वो तसव्वुर बन जाता है, जब उस तसव्वुर में गहराई पैदा होती है यानी हमारा जहन उसकी तरफ और ज्यादा मतवजो हो जाता है, तो हमें उसके खदो खाल और तमाम नक्शो निगार वाजे होते चले जाते हैं, तो फिर हमारी बाकी हिस्सियात काम करती है और वो चीज हमें महसूस होने लगती है। ये पांचों हिस्सियात की तखलीक कहलाई। मुर्शिद करीम के तसर्रुफ से, यानी अगर वो इस्तेमाल करे, मुर्शिद करीम अपने सालक अपना जहन उनके हवाले कर दे, अगर सालक लतीफा नफसी से वाकफियत हासिल कर लेता है, अब वो वाकफियत ही तो करवा रहे हैं, उसकी बाबत ये जो सारा किताबें लिखी, ये सारा कुछ लिखा इससे आगाह करने के लिए, ये और किस तरह से वो वाकिफ करवाएं, अगर हम इसको सुनना ही गवारा ना करें या इसको पढ़ना ही गवारा ना करें या हम इसको गौर करना गवारा ना करें, तो भाई उन्होंने तो काम पूरा किया, एक चीज को लिख के भी बता दिया, वजाहत भी कर दी। मुर्शिद करीम के फिर तसर्रुफ से जब आप उस पर गौर फिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग बैत होते हैं उनका जहन कनेक्टेड होता है अपने मुर्शिद से, तो जब वो कोई गौर फिक्र करते हैं और इस जहत में करेंगे तो फिर मुर्शिद करीम तसर्रुफ कर सकते हैं, करते हैं, और अगर सालक लतीफा नफसी से वाकफियत हासिल कर लेता है तो और करें आगे क्या बताने लगे, तो वो वहम ख्याल तसव्वुर और शय के मुजाहराती वजूद के कानून से वाकिफ हो जाता है। ये है तसर्रफ की असल। क्या तसर्रफ करते हैं कि वो बंदा वहम ख्याल तसव्वुर और शय और उसके बाद उसके मुजाहराती वजूद के कानून से वाकिफ हो जाता है कि ये सब कैसे हो रहा। अब इसकी फर्दर तशरी कर रहे हैं कि हजूर कलंदर बाबौलिया ने लतीफा नफसी को एक रोशन चिराग से तशबीह दी है और कायनात को दायरा कहा, यानी दायरे में एक चिराग रोशन है। इस रोशन चिराग की रोशनी ही दायरों को मुनव्वर करती है। ये रोशनी जो दायरों को रोशन रखे हुए दायरे को देखने का जरिया बनती है। अब चिराग की लौ कायनात के दायरे पर पड़ती है तो कायनात रोशन हो जाती है, यानी चिराग की लौ कायनात को देख रही है और जहां जहां लौ की रोशनी जिस जिस मुनासिबत और फासले से दूर या करीब से मुनक्कस होती है उसी मुनासिबत से निगाह में तनव्वो पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर चिराग की रोशनी बहुत हल्की पड़ी है उन चीजों से मुतालिक हमारे जहन में एक वहम पैदा होता है, किसी चीज से मुतालिक एक हल्का खाका जहन महसूस तो करता है लेकिन शऊर उसका दबाव महसूस नहीं करता। ये बहुत हल्की रोशनी जब हल्की हो जाती है यानी उसके हल्केपन में कमी हो जाती है तो वहम का बहुत हल्का खाका बनता है और खाके में जब गहराई पैदा हो जाती है तो वो ख्याल बन जाता है, फिर इस ख्याल में भी गहराई पैदा होती है। ख्याल में गहराई पैदा होने का मतलब ये हुआ कि लौ की रोशनी तेज हो जाती है। जहां रोशनी तेज हो जाती है कायनाती दायरे के अंदर मौजूद चीजों का तसव्वुर जहन पर वारिद होने लगता है। अब तसव्वुर का मतलब यह है कि किसी चीज का नक्श दिमागी स्क्रीन पर इस तरह उभर आए कि दिमाग और शऊर वजन महसूस करे और दिमाग उसके खदो खाल देखने लगे, यानी उसकी डिटेल्स, उसके फीचर, उसका साइज, उसकी डायमेंशंस, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके हदूद दिखने लगे खदो खाल। और जिन चीजों पर चिराग की रोशनी बहुत तेज पड़ती है वो चीजें फिर तसव्वुर से गुजर कर मजहर बन जाती हैं। मजहर का मतलब क्या हुआ कि जो चीज पीछे मौजूद है वो इजहार के दर्जे पे आ गई, वो जाहिर हो गई। तो ये है मुजाहरात का कानून कि वो चीज मजहर बन जाती है। इसमें बहुत ही अजीब नुक्ता है कि कोई चीज जो हम देख रहे हैं उसे आंख नहीं देख रही बल्कि रोशनी आंख बन जाती है, रोशनी बसारत बन जाती है और यही रोशनी निगाह बन जाती है। रोशनी निगाह बनने के बाद दूर और करीब से मुजाहिरा करती है तो दूरी या कुर्बत की बुनियाद पर किसी चीज को देखने से पहले चार मरहले आते, यानी यहां सब कुछ रोशनी है, रोशनी रोशनी को देख रही है, रोशनी निगाह बन रही है, रोशनी ही बसारत बन रही है, रोशनी निगाह बनने के बाद ये दूर और करीब से मुजाहिरा कर रही है। जो चीज जाहिर हो रही है वो भी रोशनी है, जिस चीज का मुजाहिरा हो रहा है वो भी रोशनी है। तो इस दूरी या कुर्बत की बुनियाद पर किसी चीज को देखने से पहले चार मरहले आते। किसी चीज को निगाह के साथ देखना उस वक्त मुमकिन है जब लतीफा नफसी की रोशनी बहुत दूर हो, बहुत दूर से मुराद बहुत हल्की हो, या कम हल्की हो, फिर तेज हो और फिर बहुत तेज हो, ये चार दर्जे वही वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास। जहां लतीफा नफसी की रोशनी बहुत हल्की है उसका नाम वहम है, जहां लतीफा नफसी की रोशनी हल्की है उसका नाम ख्याल है, और जहां लतीफा नफसी की रोशनी तेज है उसको तसव्वुर कहते हैं, और जहां रोशनी बहुत तेज है वो शह निगाह के लिए मजहर बन जाती है। अब देखिए एक ही बात को मुर्शिद करीम कितनी बार दोहरा रहे हैं, क्यों? ताकि ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि यहाँ ये चार मराहिल जो हैं वो क्या हैं, और ये चार से छः और पाँच और दो और तीन का क्या सिलसिला है। इन्हीं चीज़ों का ना को समझाना, गौर कीजिए, वही चार बातों को तकरार किया जा रहा है। अब इस कानून से वाकफियत हासिल करने के लिए बहुत सारी मशकें हैं, उनमें से एक मशक जिसका हाल आप पढ़ चुके हैं इस्तरखा भी है। किसी चीज को तवाहमाती तौर पर ख्याल के दायरे में या तसव्वुराती और मुजाहराती तौर पर देखने का कानून यह है कि सालक के ऊपर मुख्तलिफ सूरतें वारिद होती हैं, यानी ये चारों दर्जे बता दिए, तवाहमाती तौर पर, ख्याल के दायरे में, तसव्वुराती तौर पर या मुजाहराती तौर पर, गोया चारों दर्जों पे देखना, देखने का कानून ये है कि सालक के ऊपर मुख्तलिफ सूरतें वारिद होती हैं, सूरतें वारिद होती हैं। अब एक तो हालत है और एक सूरत है, जिस चीज को आप देख रहे हैं उसकी एक सूरत है जिसमें हम कहते हैं सूर फूंका जाएगा, सूर से लफ्ज मुसव्विर भी है और उसी से सूरत भी है और उसी से तस्वीर भी है, उसी से तसव्वुर भी है। उधर नहीं जाने देते जहन को, वहां पे एक नरसंगा लेके बैठे हुए जिसमें सूर फूंका जा रहा है। तो असल में ये जो खाका सा है इसको सूर कहा गया। तो बहरहाल मुख्तलिफ सूरतें वारिद होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमले इस्तरखा से समात हरकत में आ जाती है, यानी निगाह बाद में हरकत में आती है, पहले समात हरकत में आ जाती है। अब समात से मुराद ये कि रूह के अंदर वो रोशनियां जो हल्की हैं और ख्यालात बन रही हैं वो आवाज बन जाती हैं। ये अमल इस्तरखा का पहला कदम है, यानी ख्यालात आवाज बन रहे हैं, ख्यालात आवाज बनने लगते हैं, तो ये इस्तरखा का पहला कदम है। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि पहले नजर खुल जाती है और फिर समात बेदार होती है, आमतौर पर, यानी देखने वाले बहुत हैं सुनने वाले कम हैं। ये बात कानूनन सुन रखें कि पहले नजर खुल जाती है, यानी लोग देखना सीख जाते हैं, लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, बहुत है माशाल्लाह, दिखता सबको है, लेकिन आगे वो फिरासत, जो चीज दिख रही उसकी मानवीयत, और फिर उसको समझना और फिर उसको सुनना समात हरकत में आ जाए तो फिर समात बेदार होती है। तो इस तरह का एक जेली फैक्टर भी बता दिया। अब होता कैसे है, वो कायनात में मौजूद किसी इंसान, किसी फरिश्ते, किसी परिंदे के अंदर वो रोशनी जो ख्याल बन रही है वो सालक के अंदर समात बनकर गूंजने लगती है, एक गुंजार पैदा होती है, यानी सालक की हिसियात कितनी तेज हुई कि वो रोशनी जो किसी दूसरी मखलूक में ख्याल बन रही है वो उसके अंदर आवाज बन के गूंजने लगती है, उसे पता चल जाता है कि फलां चीज के जहन में ये ख्याल गुजर रहा है। ठीक, कायनात में किसी भी चीज, चाहे वो फरिश्ता हो, आप देखे फरिश्ता किसी को नजर ही नहीं आता, लेकिन फरिश्ते के अंदर जो रोशनी काम कर रही है और जो ख्याल बन रही है रोशनियां, वो सालक के अंदर एक गुंजार पैदा करती हैं, उससे वो सालक को फिर रफ्ता रफ्ता जब उसकी ये सलाहियतें बढ़ती हैं, उसको ट्रांसलेट करना आ जाता है, तो वो समझ जाता है कि इनके जहन में क्या चल रहा है या क्या बात वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आली मुकाम है कि जब वही नाजिल होती है तो कानों में मक्खियों की भिन भिनाहट और घंटियों की आवाज आती है। अमले इस्तरखा में कामयाबी हासिल करने के लिए मादी चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पे ये बात छोड़ दी है, इसकी मजीद वजाहत नहीं की कि सालक के जहन में किस तरह झींगर की आवाज आती है या किस तरह से भिन भिनाहट की या वो सीटी सी बजने की या घंटियों की सी आवाज आती है। तो अमले इस्तरखाक में कामयाबी हासिल करने के लिए मादी चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। मुसलसल बेदार रहने से और नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के साथ साथ अमले इस्तरखा कर रहे हैं पट्टी बांध के डेलों की पलकों की। अब आप इससे अंदाजा करें कि डेलों और पलकों की हरकत से कितने रिजल्ट्स हैं, तो जिस्म के बाकी मतलब जैसे डायफ्राम है उसकी हरकत को कंट्रोल करने से कितने ये चमत्कार दिखाते हैं ये योगी वगैरह। तो इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की गैर इरादी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पे कंट्रोल जो है वो किस तरह से इंसान की सलाहियतों को बढ़ाता है। तो उसके साथ साथ अगर स्याह मिर्चों का सफूफ रुई के फोयों पर लगाकर कानों में रखा जाए, क्या ये काली मिर्चें स्याह मिर्चें इन्हें पीसकर रुई के फोए पे लगाना नहीं है, बाहर नहीं लगाना है, इसके अंदर लपेट लें रुई को वरना कान जलेंगे, ये गलतियां करके सीखा था हमने। तो उसे पानी से गीला भी किया जाता है तो उससे दिमाग के अंदर ख्याल बनने वाली रोशनियां तेज होने लगती हैं या एको करने लगती हैं, यानी गुंजार पैदा करने लगती हैं, टकराती हैं और वो फिर एक गूंज एको एको कहते हैं एक गूंज को। जब आदमी अमले इस्तरखा में रुई के फोयों पर स्याह मिर्च का सफूफ छिड़क कर कानों में रखता है और मुराकबा करता है तो क्या होता है, उसे दूर परे की चीजें अपने अंदर गूंजती हुई महसूस होती हैं। मसलन एक आदमी अमले इस्तरखा के बाद मुराकबा कर रहा है, अब उसके कानों में रुई के फोए रखे हुए हैं, अब उसका ख्याल किसी फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों की आवाज वो बाहर से सुनने के बजाय अपने अंदर सुनता है। अला हाजल कयास, यानी फिर आगे आप कयास करते जाएं और इसी तरह वो दूसरी आवाजें भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं, यानी कि दूसरी आवाजें इसी तरह अगर आप मुराकबा कर रहे हैं तसव्वुर शेख का तो आपको अपने शेख की आवाज आप अपने अंदर गूंजती हुई महसूस होना शुरू हो जाए, फिर आपको उस आवाज में मानी और अल्फाज बनते लगे और फिर वो मानी समझ आने लगे। तो ये भी एक तरीका है इस तरह के से फायदा लेने का। तो सुनने की हिस के बाद अमले इस तरह में सूंघने और छूने के हवास बेदार हो जाते हैं। लाखों साल के फासले पर अगर खुशबू की तरफ जहन मतवज्जो हो जाए तो आदमी उस खुशबू को सूंघ लेता है। इसी तरह कोई चीज लाखों मील के फासले पर मौजूद है और ख्याल उसके छूने की तरफ मुंतकिल हो गया तो आदमी उसका लम्स महसूस करता है, लम्स महसूस करता है, यानी हिसियात को इस दर्जे पे महसूस करना जरूरी है सालक के लिए। यानी जो भी तला जहन में आ रही है उसको आपने समात बसारत और शामा और फिर लम्स के दर्जे तक जाना। अब एक जाती तजर्बा मुर्शिद करीम ने लिखा है, आप इससे इनके कवि नफ्स होने का अंदाजा कर लीजिए। हजूर कलंदर बाबा औलिया जिस वक्त ये कानून लिखवा रहे थे तो मेरा जहन कश्मीर में जाफरान के खेतों की तरफ मरकूज हो गया। कश्मीर में खेतों का तसव्वुर कायम करके मैंने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए और देखते ही देखते कमरा और घर का सहन जाफरान की खुशबू से मुअत्तर हो गया। बाहर से आने वाले मेहमानों ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि इतनी तेज जाफरान की खुशबू कहां से आ रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुर्शिद करीम ने जब उनका जहन जाफरान की खुशबू पे मुर्तकिज हो गया और उन्होंने उस खुशबू को महसूस किया, तो उनके महसूसात उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी महसूस होने लगे। वो बंदा जिसके महसूसात दूसरों तक मुंतकिल होने शुरू हो जाएं, ऐसे बंदे को कहते हैं कवियुन नफ्स, यानी उसका इनर सेल्फ बहुत मजबूत और स्ट्रांग होता है, रिसेप्शन में भी और रिले में भी। ये माशाल्लाह जी आपका 11वां चैप्टर मुकम्मल हो गया। इस चैप्टर का खलासा और लुबे लुबाब ये बना कि लतीफा नफ्सी की रोशनियां आपको चार मराहिल से गुजार के, यानी वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास से रूशनास कराते हुए चीजों को मजहर या मुजाहराती दर्जे पे मुतारिफ कराती हैं। अब हम लोग परेशानियों की तरफ मतवज्जो रहेंगे तो क्या होगा, परेशानियां मजहर बनती रहेंगी, खुशियों की तरफ मतवज्जो होंगे तो खुशियां मजहर बनती रहेंगी। ये है वो कानून। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी। ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। आपका शुक्रिया जी कि आप इतने जी में आप इतने तवज्जो और इनहमाक से ये सुन लेते हैं। मुझे भी हौसला होता है आपके साथ पढ़ने में, अच्छा लगता है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे जी। अपना ख्याल रखिए।